बनी इसराइल से पूछो कैसी खुली खुली निशानियां हमने इनको दिखाई हैं। कहां देखी हैं आपने भी? पहले पारे में वादी ती में क्या कुछ हुआ था? बादलों का साया था और बहुत सारी चीजें और इसी तरह की और चीजें। और फिर ये भी इन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम इसको बदबख्ती से बदलती है, इसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है? जिन लोगों ने कुफर की राह अख्तियार की है, इनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब और दिल पसंद बना दी गई है। हाईलाइट करेंगे, काफिरों को ये दुनिया खूबसूरत लगती है, मोमिन के लिए तो दुनिया एक सख्त चीज है। ऐसे लोग ईमान की राह अख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क्यामत के रोज परहेजगार लोग ही इनके मुकाबले में आली मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिस्क, तो अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बेहिसाब दे। इब्तिदा में लोग सब एक ही तरीके पर थे, कौन से? लिख लीजिए तौहीद के। फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रूनमा हुए, तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवि पर बशारत देने वाले और टेढ़े रास्तों पर चलने के नताइज से डराने वाले थे, और इनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनमा हुए थे इनका फैसला कर ले। और इन इख्तलाफात के रूनमा होने की वजह ये ना थी कि इब्तिदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तलाफ इन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो नबियों पर ईमान ले आए, इन्हें अल्लाह ने अपने इज़्ज़त से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था, और अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है। 3 सेकंड के लिए अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी रास्ता दिखा दे, थक गई हूँ भटक भटक के, अल्लाह मुझे अब और गुमराह नहीं होना, तो मुझे अपने रास्ते पे ले आ। और अल्लाह के रास्ते पे जब इंसान आता है ना, तो उसको एक तड़प लग जाती है कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं। तो अल्लाह ताला अगली आयत में खबर देते हैं, अम हसिब तुम अंतुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मयातिकुम, और अभी तो तुम पर वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पहले ईमान वालों पर गुजर चुके, उन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आई, हिला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथी जो उसके साथ थे वो पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। इस वक्त इनको तसल्ली दी गई कि हाँ अल्लाह की मदद करीब है। अपने ऊपर लीजिए, लोग कहते हैं आज के दौर में इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, क्या होता है जरा अपने से क्वेश्चनिंग कीजिए। उम्मते मुस्लिमा का आज एक ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, कहते हैं हम अमल नहीं कर सकते। क्या कहते हैं लोग? नहीं, वो फिर एयरपोर्ट पे सख्ती होती है और फिर जॉब्स नहीं मिलती, फिर इंटरव्यू सख्त लेते हैं, और फिर वो हमारी एयरपोर्ट पे जूतियां उतरवाते हैं, फिर हमारे कोट्स उतरवाते हैं। आपने ये शशे सुने हैं लोगों से? मैं नहीं मानती इनको, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन ये भी हम मुसलमानों की ज्यादती है जो हम सोचते हैं। सबकी वो ले रहे होते हैं, आपकी भी ले लेंगे तो क्या बड़ी बात है, वो सबको मसाज करते हैं, थोड़ा सा आपको भी कर देंगे तो क्या बड़ी बात है, कितना मजा आता है उस वक्त जब वो मसाज करते हैं। सबको पता है कि सफर से पहले एक रात आप जागे ही होते हैं। मैं तो हमेशा उनको यही कह के आती हूँ, कभी जहां होती है सबको करे तो कहती है गुड मसाज, तो वो फिर हंसती हैं आगे से। ऐसे ही है ना, अपने दिल से ये कॉम्प्लेक्स निकाल दें कि बिकॉज आई एम मुस्लिम दैट्स वाई दैट हैपन टू मी, बिकॉज दिस बिकॉज दिस। कुछ कहते हैं फोन पे बात बड़ी अच्छी की उन्होंने, फिर जब गए तो फिर नो कह दिया क्योंकि मैं स्कार्फ लेके गई थी। ये निकालना पड़ेगा इस दौरे कुरान में। हम कुछ भी ना ले सके ना इस साल के दौरे कुरान से, तो हमने वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम का ख्याल निकालना है, नो आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम। जब घर से अब हारने की नीयत से जाएंगे तो आपको कौन जितवाएगा? बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम अल्लाह की नहीं मानते ना, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में दूसरों का रोब डाल देता है। चलिए ये सब मान ले, हो गया, तो वो सोचिए जो बीबी सुमैया के साथ हुआ, जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया गया, एक पांव एक ऊंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। जो बीबी आसिया के साथ हुआ, अपने ही शौहर ने हाथों पांव में कील ठोक के सूली पे चढ़ा दिया। बिलाल जो कोयलों पे दहकाए जाते थे, वो बड़ा है कि आज का बड़ा है? आज तो कर्टेसी का दौर है, रिलीजियस फ्रीडम है, पावर ऑफ स्पीच है, आज तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उनको तो इतना कुछ हुआ और तुम इतनी छोटी सी बातों पे घबरा जाओगे, तो याद रखो कि फिर तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। फरमाए लोग पूछते हैं हम क्या खर्च करें, जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिसकीनों पर और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह इससे बाखबर होगा। देखिए सहाबा के सवाल क्या होते थे, क्या खर्च करें। आज अमूमी तौर पे लोगों का सवाल क्या होता है, क्या ना खर्च करें। अच्छा वो डोरियों का वजन तो काट लेंगे ना ज्वेलरी में से ज़कात देते हुए। अच्छा स्टोन्स का वजन तो निकलेगा ना। अच्छा नए सोने का रेट लगाएं ज़कात में कि पुराने का। इस तरह से हम मीन मेख करके अल्लाह के साथ कंजूसी के साथ मामला करते हैं कि मैं सोचती हूँ कि फरिश्ते भी देखते होंगे कि अल्लाह ये तेरा बंदा कैसा है। लेकिन सहाबा कहते थे अल्लाह के नबी हम क्या खर्च करें, तो अल्लाह ने इतने प्यारे तरीके बता दिए। ये नहीं बताया क्या खर्च करें, ये बता दिए कहाँ खर्च करें। और इसी तरह एक सहाबी थे वो कहते हैं देखो अल्लाह ने जो खर्च की जगह बताई है ना इसमें तबला है, ना इसमें सरंगी है, ना इसमें बांसुरी है। मतलब क्या था कि मुसलमान का माल किसी नाफरमानी की चीज़ में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुम्हें जंग करने का हुक्म दिया गया है और तुम्हें नागवार है, हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। इस आयत को हाईलाइट करें आसान तक रहो शयन बहुव खैरुल लकुम, ये आगे भी आएगी तो यही समझ लीजिए इसको, आसान तक रहो शयन बहुव खैरुल लकुम, और हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ नापसंद गुजरे जबकि वो तुम्हारे हक में अच्छी हो। आसान तो हिब्बु शयन बहुव शर्रुल लकुम, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो बुरी हो। कि ये फितरत का असूल है। अमूमन लोगों को क्या अच्छा लगता है, आसानियाँ। आसानियों में इंसान सुस्त पड़ जाता है। सेहत अच्छी लगती है ना बीमारी की निस्बत, हालांकि बीमारी में गुनाह चढ़ते हैं। बच्चों से पूछिए चॉकलेट अच्छी लगती है दांत खराब होंगे, कोक अच्छी लगती है दूध अच्छा नहीं लगता। तो जिंदगी में जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं ना वही अच्छा हो। आप अपने बच्चों को भी ये असूल देते ही होंगे, लेकिन अपने भी अल्लाह के मामले में याद रखिए कि अल्लाह के फैसलों पर राजी हों। जिंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे मुश्किल हालात से आप गुजरेंगे कि आपको लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पास खैर ढूंढिए। एक वाक्य आता है सही बुखारी में, एक औरत है काली माई, वो अपना वाक्य सुनाती हैं। किसी भी कबीले में रहती थी, मदीना के करीब वो बसती थी। तो कबीले की जो कोई भी था, औरत था या मर्द, उनमें से किसी का हार चोरी हो गया। कोई कहता है बेल्ट चोरी हो गई, कोई ज्वेलरी चोरी हो गई। उन्होंने इस औरत पे शक किया क्योंकि ये लॉन्डी थी। उन्होंने इसकी तलाशी ली और जिस्म के खुफिया हिस्सों की भी तलाशी ली, हालांकि इसने वो चोरी नहीं की हुई थी। इससे इसका दिल खट्टा हो गया, कुफर पे थी, लेकिन इसने अपने गुमान के मुताबिक दुआ की अल्लाह से कि ऐ रब तू है अगर तो मुझे इनके सामने सुरखरू कर दे, मैं इनके पास अब नहीं रहूंगी। अल्लाह ने उस औरत की दुआ सुनी, आसमान से एक उड़ती हुई चील आई ईगल, और उसने सबके सामने वो हार या वो बेल्ट जो थी वो फेंक दी। वो कहीं से उठा के ले गई हुई थी और उसने आके फेंक दी। सब ने जब देखा तो वो शर्मसार हो गए, माफिया मांगने लगे, हमें माफ कर दो। कहने की माफी वगैरह कोई नहीं है, बस मुझे आजाद कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा खुशी से जाओ, जो लेना ले जाओ। अब ये औरत सर पे गठरी रख के जा रही है, मैं किधर जाऊं कुछ नहीं पता। और इसी तरह मदीना में आ गई, मस्जिद नबी के पास आई, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। जब आपको पता चला ये एक औरत है बेघर है, आपने मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा चबूतरा उसके लिए डलवाया, वो उसमें रहने लगी। मुसलमानों का तर्ज अमल देखा तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। सारा दिन मस्जिद नबी साफ करती, खिदमत करती, और जब फारिग होती तो आपकी बीवियों के पास आके बैठ जाती। और हजरत आयशा कहती हैं कि जब वो औरत हमारे पास बैठती तो एक शेर बहुत पढ़ती थी, और उसका खुलासा क्या था कि वो हार की चोरी का दिन मेरे रब की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी थी कि जो मुझे कुफर के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में ले आई। ये है आसान तक रहो शयन व हुवा खैरुल लकुम, ये असूल पल्ले से बांध लें। जो मुश्किल आप पे आएगी बाद में खैर होगी। और मैं इसको फिर अपने इसी थीम से जोड़ दूं, आज हम मुसलमानों पे जो हालात है ना, हर तरफ ही हमें बातें सुननी पड़ती हैं, ये है तो बड़े नागवार, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा हो रहा है। और वो क्या, हमारी यूथ के अंदर ग्रह जा रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि वो जाग उठे हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह फिरौन के जुल्म से निकलने के लिए बनी इसराइल बेचैन थे ना, आज हमारी यूथ बातें नहीं सुन सकती। यहाँ बड़े लोगों को आप देखिए तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे। शर्त एक है कि हम ताल्लुक बिल्ला मजबूत रखें। तो जिंदगी में हर चीज़ आपकी मेरी मर्जी की नहीं होगी, فرمایا لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو ان سے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ کو ماننے والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ تو خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے۔ یعنی خود اتنے بڑے بڑے جرم کیے کفار مکہ نے، اس کو بھول گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل خطا ہوا تو اس کو شوشہ بنایا۔ آج بھی ایسے خود جو مرضی کر دیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں، لیکن مسلمان کی چھوٹی سی بات پکڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بات دوسروں کے لیے وہی تمہارے اپنے لیے ہونے چاہیے، وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار اور جہاد کیا، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا۔ ایک ایک چیز پہ ہائی لائٹ کیجیے، کیا ہم نے یہ سب کیا؟ چند باتیں تدبر کی، کیا میں ایمان لائی؟ الحمدللہ کسی حد تک ہے۔ کیا اللہ کے راستے میں ہجرت کی؟ کس کو چھوڑنا ہے؟ ناپسندیدہ خواہشات کو چھوڑنا ہے، عادتوں کو چھوڑنا ہے، اور ضرورت پڑی تو جگہوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اور کیا میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ کیسے کرنا ہے؟ قلم پکڑ کے، نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، معاشرے سے بھی کرنا ہے۔ فرمائے یہ سب کر لو گے تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسی لوگوں میں کر دے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے پہلی آیت ترتیب کے اعتبار سے شراب کی حرمت کی۔ عربوں میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، کرتے کیا تھے کہ شراب کے نشے میں خوب صدقہ خیرات کرتے، اپنے اونٹ ذبح کر کے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اسی طرح جوا کھیلتے، گیملنگ، اور اس سے جو مال حاصل ہوتا تھا اس سے جا کے بڑی بڑی دعوتیں پکاتے۔ جب لوگ ان کو آ کے منع کرتے کہ ایسا کیوں کرتے تو کہتے دیکھو ہم یہ شراب پی کر اچھے کام کرتے نا، جس کو قرآن یا اسلام ام الخبائث کہتے ہیں، یہ شراب کو کریمہ کہتے تھے۔ کریم کہتے ہیں جنرس کو، یعنی ہم نشے میں پڑھ کے بہت اچھے کام کرتے ہیں، اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ یہ بالکل وہی کہانی ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں فار اے گڈ کاز، یہ کنسرٹ کیوں کر رہے ہو؟ فار اے گڈ کاز، کیا ہوگا اس کا پیسہ؟ زلزلہ زدگان کو جائے گا۔ اور یہ کام کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کے بعد ہم وہاں اس پیسے سے جا کے مجاہدین کی مدد کریں گے۔ دیکھیے یہ دھوکہ ہے شیطان کا، فوڈ فار گڈ کاز، غلط کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی بھی کسی چیز سے فائدہ بھی ہونا تو یہ سوچئے کہ اللہ کی رضا کے مطابق وہ کام کیا ہے کہ اس کی ناراضگی سے کیا ہے۔ پھر دوبارہ آ گیا صحابہ کا سوال کہ ہم کیا خرچ کریں، تو فرمایا ہے پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس ایک آیت پہ اگر ہم عمل کریں نا تو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے سب صدقہ۔ نہ آپ رات کا کھانا رکھ سکتے ہیں، نہ آپ کپڑے رکھ سکتے ہیں گرمی سردی کے، اور اگر حدیث سے کاٹ کر قرآن کو سیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں مختلف درجے بتا دیے گئے کہ کبھی ضرورت سے زائد سب دے دو اور کبھی رکھ بھی لو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے خیر ہو۔ دیکھیے پسے ہوئے طبقے کی اللہ مدد کر رہے ہیں، اور وہی طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آیت بر گئی ہے اس کے بعد سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر ہے نا، قصاص سے لے کر وصیت، پھر حج اور عمرے کے مسائل، پھر قتال کی باتیں۔ اب اس سے اگلا حصہ جو ہوگا یہ معاشرتی معاملات ہیں جس میں نکاح اور طلاق اور عدت کی باتیں